नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 15, सेज शॉर्ट एंड स्मार्ट, समरी राइटिंग के बारे में।
जी
जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी लंबी बात को छोटा मगर स्मार्ट तरीके से कहने की कला है।
बिल्कुल।
हमारे पास सोर्स के तौर पर ये पूरा चैप्टर है जो बताता है कि एक अच्छी समरी कैसे लिखें। तो आज की बातचीत का मिशन है समरी के पीछे का आइडिया, उसके तरीके और उसका असली महत्व समझना।
हाँ, मतलब सिर्फ कैसे करें नहीं, बल्कि क्यों करें और इसका असर क्या होता है ये भी।
बिल्कुल, इस चैप्टर का मकसद सिर्फ स्टेप्स बताना नहीं है ना, एक सोच बनाने की बात है।
सही कहा, कैसे इतने सारे शब्दों में से उसका सार, उसका निचोड़ निकालें। तो इस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट्स और स्टेप्स दिए हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे ताकि सब लोग इस स्किल की बारीकियों को समझ सकें।
हाँ, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल कॉलेज की बात नहीं है, आज के इन्फॉर्मेशन एज में तो ये बहुत जरूरी हुनर है।
बिल्कुल,
रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, ये समरी आखिर है क्या? चैप्टर के हिसाब से डेफिनेशन तो सीधी है, किसी लंबे टेक्स्ट का छोटा वर्जन जिसमें सिर्फ उसके मेन आइडियाज हो।
हाँ,
पर यहां जरूरी है कि ये ब्रीफ हो, क्लियर हो और सबसे खास लिखने वाले के अपने शब्दों में हो, है ना? ये सिर्फ कटाई छटाई नहीं है।
हाँ, ये अपने शब्दों में वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि लिखने वाले ने सिर्फ छोटा नहीं किया, बल्कि समझा है, प्रोसेस किया है और फिर अपने तरीके से बताया है।
सही, कॉपी पेस्ट से एकदम अलग।
बिल्कुल, और ब्रीफ और क्लियर होने का मतलब है कि पढ़ने वाले को कम टाइम में मेन पॉइंट पता चल जाए बिना किसी कंफ्यूजन के। चैप्टर इसी पर जोर देता है।
और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? चैप्टर साफ बताता है कि इससे हमें किसी टेक्स्ट का मेन आइडिया समझने में मदद मिलती है।
जी,
ये याददाश्त के लिए, नोट टेकिंग के लिए बढ़िया है। और हाँ, टाइम तो बचता ही है, एग्जाम हो या कोई रिपोर्ट पढ़नी हो।
फायदा इससे भी गहरा है। जब आप किसी चीज को समराइज करते हैं ना, तो आप असल में उस इन्फॉर्मेशन से जूझ रहे होते हैं। आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या रखना है, क्या हटाना है।
अच्छा,
ये प्रोसेस ही आपकी अंडरस्टैंडिंग को गहरा बनाता है। ये सिर्फ छोटा करना नहीं, बल्कि प्रायोरिटाइज करना और ऑर्गेनाइज करना भी है। एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है ये।
क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है इससे। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तो एक अच्छी समरी बनाने के लिए वो कौन सी खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए?
चैप्टर कुछ की एलिमेंट्स की बात करता है। पहला है मेन पॉइंट्स की पहचान, की पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन।
हाँ बिल्कुल,
मतलब ये समझना कि पूरे टेक्स्ट में ऑथर कहना क्या चाहता है, उसके मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं।
और ये शायद उतना आसान नहीं होता होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। चैप्टर कहता है कि हमें मेन आइडिया और उसे सपोर्ट करने वाले सपोर्टिंग डिटेल्स पे फोकस करना है, पर साथ ही फालतू चीजों को पहचान कर हटाना भी सीखना होगा।
जैसे?
जैसे कि एग्जाम्पल्स, कोई एक्स्ट्रा कहानियां, बहुत लंबे डिस्क्रिप्शंस या फिर डायलॉग। ये सब चीजें टेक्स्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है, पर अक्सर वो कोर मैसेज का हिस्सा नहीं होती।
अच्छा,
चैप्टर इसके लिए कुछ गाइडिंग क्वेश्चंस भी देता है ना, एक तरह की फिल्टर जैसे। हाँ, वो सवाल बड़े काम के हैं। कौन, हु, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कहाँ और कब, वेयर एंड व्हेन, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट।
अगर हम पढ़ते हुए इन सवालों के जवाब ढूंढ लें तो मेन आइडियाज के काफी करीब पहुंच जाते हैं।
और चैप्टर में एक बहुत प्रैक्टिकल टिप भी दी है।
क्या?
कि पढ़ते समय हर पैराग्राफ में मेन आइडिया को अंडरलाइन करें या हाईलाइट कर लें।
एक्टिव रीडिंग टेक्निक।
बिल्कुल, जब आप कुछ अंडरलाइन करते हैं तो आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बाद में जब समरी लिखने बैठते हैं तो ये अंडरलाइंड हिस्से एक रोड मैप का काम करते हैं। पूरा टेक्स्ट दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता।
बहुत बढ़िया। तो पहला एलिमेंट हुआ मेन आइडियाज को पकड़ना और फालतू चीजें छोड़ना।
दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है दोहराव से बचना, अवॉइडिंग रिडंडेंसी।
हाँ, ये भी बहुत जरूरी है।
इसका मतलब है एक ही बात को बार बार या अलग अलग शब्दों में कहने से बचना। चैप्टर इस पर काफी जोर देता है।
बिल्कुल, रिडंडेंसी मतलब फालतू का दोहराव समरी के मकसद के खिलाफ है, जो है संक्षिप्तता।
चैप्टर कहता है कि हमें सिर्फ शब्दों के दोहराव से नहीं, बल्कि आइडियाज के दोहराव से भी बचना है।
इसमें क्या क्या आता है?
जैसे डिटेल डिस्क्रिप्शंस, लंबे डायलॉग्स, राइटर की अपनी ओपिनियंस या बहुत इमोशनल लैंग्वेज। साथ ही मुझे लगता है, मेरी राय में, ऐसे फ्रेजेस से भी बचना है।
क्यों?
क्योंकि समरी का काम ओरिजिनल टेक्स्ट को प्रेजेंट करना है, उस पर अपनी टिप्पणी देना नहीं।
इसे समझाने के लिए वो लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी का एग्जांपल दिया ना चैप्टर में।
हाँ, फॉक्स एंड ग्रेप्स। वो दिखाता है कि कैसे पूरी कहानी के बजाय सिर्फ सार बता सकते हैं।
ओरिजिनल कहानी में तो लोमड़ी की कोशिशें, उसकी फ्रस्ट्रेशन, अंगूर कैसे दिखते थे, ये सब होगा।
हाँ, पर समरी में सिर्फ इतना कि लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाई और उसने कहा कि वे खट्टे हैं।
बस, मतलब उसके कूदने का डिटेल, उसकी फीलिंग्स सब हटा दिया।
हाँ, क्योंकि वो सपोर्टिंग डिटेल्स या इमोशनल पहलू है, मेन आइडिया नहीं। मेन आइडिया सिर्फ इतना है कि जो चीज मिले नहीं उसे खराब बता दो। समरी इसी पर फोकस करती है।
गोल है ऑब्जेक्टिविटी और कंसाइजनेस बनाए रखना।
बिल्कुल, ओरिजिनल टेक्स्ट के मैसेज के प्रति लॉयल रहना है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, सिवाय उन चीजों के जो मेन आइडिया के लिए जरूरी नहीं है।
बिल्कुल सही। अब आते हैं तीसरे एलिमेंट पर, वर्ड लिमिट और कोहेरेंस। चैप्टर में क्लास 7 के लिए 50-100 शब्दों की लिमिट का एग्जाम्पल दिया है। असल जिंदगी में भी अक्सर वर्ड लिमिट होती है, इसमें रहना क्यों जरूरी है?
वर्ड लिमिट आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है, या आपको मजबूर करती है कि आप सिर्फ सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन ही चुने। ये प्रायोरिटाइज करने की एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है।
हाँ, वरना शायद हम बहुत कुछ लिख दें जो उतना जरूरी ना हो।
एग्जैक्टली, लिमिट हमें फोकस्ड रखती है।
और सिर्फ शब्द गिनना काफी नहीं है, समरी को कोहेरेंट भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है?
कोहेरेंस का मतलब है कि सेंटेंसेस आपस में लॉजिकली जुड़े हों, पढ़ने में एक स्मूथ फ्लो हो, ऐसा ना लगे कि बस अलग अलग वाक्य इकट्ठे कर दिए हैं।
इसके लिए चैप्टर क्या सुझाता है?
दो मुख्य बातें, सिंपल कनेक्टेड सेंटेंसेस लिखें और लिंकिंग वर्ड्स का यूज करें।
हाँ, लिंकिंग वर्ड्स जैसे और, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, फिर, उसके बाद।
जी, और सीक्वेंस दिखाने के लिए फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली, या कॉज इफेक्ट के लिए बिकॉज, सो, देयरफॉर, हाउएवर, इनका सही इस्तेमाल समरी को बिखरा हुआ होने से बचाता है।
ये आइडियाज के बीच कनेक्शन बनाते हैं, है ना?
बिल्कुल, जिसे रीडर को लॉजिक समझने में आसानी होती है। एक और बात जो कोहेरेंस में मदद करती है और चैप्टर में मेंशन है, वो है पूरे टेक्स्ट में एक ही टेंस का यूज करना।
अच्छा, टेंस कंसिस्टेंसी।
हाँ, आमतौर पर प्रेजेंट टेंस यूज होता है, पर अगर ओरिजिनल टेक्स्ट पास्ट टेंस में है तो समरी भी पास्ट में हो सकती है। पॉइंट ये है कि बीच बीच में टेंस बदलना नहीं है।
वो प्यासे कौवे वाली कहानी का एग्जाम्पल था ना चैप्टर में, थर्स्टी क्रो।
हाँ हाँ, ओरिजिनल कहानी में शायद बहुत कुछ हो, कौवे की प्यास, पानी की तलाश, घड़ा मिलना, पानी नीचे होना, कंकड़ डालना, पानी ऊपर आना, पीना, उड़ जाना।
और समरी में?
समरी में बहुत छोटा कर दिया। प्यासे कौवे को एक घड़ा मिला जिसमें थोड़ा पानी था, उसने उसमें पत्थर डाले, पानी पिया और उड़ गया।
अरे वाह,
देखा, सिर्फ मेन एक्शंस, मिला, डाले, पिया, उड़ गया को पास्ट टेंस में रखकर पूरी कहानी का सार बता दिया, सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स हटा दिए। सेंटेंसेस सिंपल है और लॉजिकल ऑर्डर में है, यही अच्छी समरी की पहचान है।
बनाए रखना।
जी,
अब बात करते हैं इसे लिखने के प्रैक्टिकल स्टेप्स की। चैप्टर 5 में 5 क्लियर स्टेप्स बताए गए हैं।
हाँ, ये स्टेप्स एक रोड मैप जैसे हैं। पहला स्टेप, पाठ को ध्यान से पढ़ें, रीड केयरफुली।
सबसे बेसिक और जरूरी, बिना समझे सार कैसे निकालेंगे?
बिल्कुल, कम से कम दो बार पढ़ना अच्छा रहता है, पहली बार जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, दूसरी बार मेन आइडियाज खोजने के लिए।
दूसरा स्टेप, मुख्य विचारों को अंडरलाइन करें या लिस्ट बनाएं। अंडरलाइन और लिस्ट द मेन आइडियाज,
ये वही की पॉइंट्स आइडेंटिफिकेशन वाली बात हुई।
हाँ जी।
तीसरा स्टेप, अतिरिक्त उदाहरण, एडजेक्टिव्स और ओपिनियंस हटा दें, रिमूव एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, एडजेक्टिव्स एंड ओपिनियंस।
ये फिल्टरिंग स्टेज है, यहां आप तय करते हैं कि जो अंडरलाइन किया है उसमें से भी क्या हटाया जा सकता है।
ये रिडंडेंसी से बचने में मदद करता है।
बिल्कुल।
चौथा स्टेप, अपने शब्दों का प्रयोग करके 3 से 5 स्पष्ट वाक्य लिखें। यूज योर ओन वर्ड्स टू राइट 3 to 5 क्लियर सेंटेंसेस।
यहां दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, अपने शब्द और स्पष्ट वाक्य।
हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं और सिंपल डायरेक्ट सेंटेंसेस। वाक्यों की संख्या 3 से 5 तो बस एग्जाम्पल है, टेक्स्ट की लेंथ और वर्ड लिमिट पर डिपेंड करेगी। लिंकिंग वर्ड्स का यूज यही होता है, वाक्यों को जोड़ने के लिए।
और पांचवा और आखिरी स्टेप, शब्द सीमा और ग्रामर की जांच करें।
चेक वर्ड लिमिट एंड ग्रामर। ये एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग स्टेज है। क्या आप वर्ड लिमिट में हैं? कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक तो नहीं? क्या पूरी समरी कोहेरेंट लग रही है?
अगर इन स्टेप्स के पीछे का लॉजिक देखें तो पहले समझना, फिर पहचानना, फिर छांटना, फिर लिखना और जोड़ना, और आखिर में सुधारना।
बिल्कुल सही, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंशन से शुरू होकर एक्सप्रेशन और फिर रिफाइनमेंट तक जाता है। हर स्टेप जरूरी है।
चैप्टर के आखिर में वो असेसमेंट एंड रिव्यू सेक्शन में एक समरी टिप्स टेबल दी है, वो काफी यूजफुल है।
हाँ हाँ, वो टेबल बहुत काम की है, एक चेकलिस्ट जैसी है। उसमें समरी के मेन एस्पेक्ट्स दोहराए गए हैं,
जैसे
पर्पस, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोहराना।
हाँ,
स्टाइल, क्लियर, शॉर्ट और कनेक्टेड सेंटेंसेस,
कोहेरेंस वाली बात।
वर्ड लिमिट, दी गई लिमिट का पालन करना।
डिसिप्लिन,
लैंग्वेज, अपने शब्द, कोई ओपिनियन या एग्जाम्पल नहीं।
ऑब्जेक्टिविटी और ओरिजिनैलिटी।
कोहेरेंस, लिंकर्स और सेम टेंस का प्रयोग।
फ्लो और लॉजिक। तो ये टेबल असल में सारे की एलिमेंट्स और स्टेप्स को समेट लेती है जिन पर हमने बात की। ये चेक करने का अच्छा तरीका है कि समरी सही बनी या नहीं।
निश्चित रूप से सेल्फ असेसमेंट में मदद करती है। क्या मैंने सिर्फ मेन आइडियाज लिए, अपनी राय तो नहीं दी, वाक्य जुड़े हैं, टेंस ठीक है? ये सवाल आपको बेहतर समरी लिखने में मदद करते हैं।
ठीक है, तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने चैप्टर 15 से समझा कि समरी राइटिंग सिर्फ स्कूल का काम नहीं है।
जी नहीं,
ये इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली समझने, प्रोसेस करने और प्रेजेंट करने का एक पावरफुल स्किल है। मेन इन्फो पहचानना, फालतू हटाना और फिर उसे क्लियर, कंसाइज और कोहेरेंट तरीके से अपने शब्दों में बताना।
हाँ, और आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में तो ये बहुत ही जरूरी है।
बिल्कुल।
यहाँ एक सवाल उठता है, चैप्टर के आखिरी में वो लिसनिंग एक्टिविटी है ना, जिसमें न्यूज स्टोरी सुनकर मेन आइडिया बताना है।
हाँ।
वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम समरी राइटिंग को अक्सर एकेडेमिक काम से जोड़ते हैं, लेकिन अगर कोई इस स्किल में मास्टर हो जाए तो ये उसके रोजमर्रा के जीवन में इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने और शेयर करने के तरीके को कैसे बदल सकता है।
हाँ, दिलचस्प सवाल है।
जरा सोचिए, हम रोज कितनी खबरें पढ़ते हैं, कितनी रिपोर्ट्स देखते हैं, कितने लंबे ईमेल्स पढ़ते हैं। क्या ये सार निकालने की एबिलिटी हमें इस इन्फॉर्मेशन फ्लड में ज्यादा तेजी से और इफेक्टिवली सही जानकारी तक पहुंचने में मदद नहीं कर सकती?
हाँ, शायद कर सकती है।
ये सिर्फ टाइम बचाने की बात नहीं है, शायद ये बेहतर समझने और बेहतर डिसीजन लेने के बारे में भी है। ये सोचने वाली बात है कि ये छोटा सा लगने वाला स्किल हमारी लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर सकता है।